आज का प्रातः क्लास है 5/11/1966 शनिवार को छठे पेज के मध्य में बात चल रही थी मैं आकर के पतितों को पावन बनाने की युक्ति बताता हूं। पतितों को पावन बनाता हूं ना, पहले क्या करता हूं, पावन बनाता हूं पतितों को, या पहले युक्ति बताता हूं है? पहले युक्ति बताता हूं। तरीका बताता हूं, क्योंकि पतित पावन हूं तो युक्ति तो बताऊंगा ना। मैं आकर के सभी पतितों को पावन बनाने की युक्ति बताता हूं, परंतु सभी पतित पावन थोड़े ही बन जाएंगे, बन जाएंगे है? 500-700 करोड़ मनुष्य जो कलयुग अंत में सब पतित बन जाते हैं, तो क्या सब पावन देवता बन जाएंगे? बनेंगे? अगर सभी पावन बन जाएं, तो फिर क्या होगा? मान लो सभी पावन बन जाएं, तो रिजल्ट क्या आएगा है? तो देवताओं की पावन दुनिया भी इतनी रचनी पड़े, कितनी बड़ी दुनिया जिसमें 500 करोड़ पतित क्या बन जावे, पावन देवी देवता बन जावे, भले नंबर वार सही। कोई 16 कला संपूर्ण, कोई 15, कोई 14 कला संपूर्ण। तो बाप अच्छी तरह से समझाते हैं कि सबको ये बात कहो कि नहीं, सब पतित से पावन नहीं बन सकते देवता, फिर भी बाबा 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 ये कह करके सबको परिचय देते रहो। किसका परिचय देते रहो है? बाबा का परिचय देते रहो। क्यों नहीं कहा? शिव बाबा का परिचय देते रहो है? अरे बाबा किसको कहा जाता है? साकार और निराकार को, मेल को पावन कहा, बाबा कहा जाता है। तो साकार मनुष्य ही होगा और निराकार आत्मा ही होगी। सारी मनुष्य शक्ति का सुप्रीम मनुष्य होगा तो आत्मा भी है। जो भी आत्माएं हैं मनुष्य मात्र की, उनका सुप्रीम ही होगा ना, आत्माओं का सुप्रीम, सुप्रीम बाप। कि कोई दूसरा हो सकता है? 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 दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि ऊंचे से ऊंचे बाप को, जिसका कोई बाप नहीं है, उसको ऊंचे से ऊंचे में प्रवेश करना पड़े। जो ऊंचे से ऊंचा देवता बनता है, त्रिदेव ऊंचे देवताएं हैं, उनमें भी देवदेव महादेव मैं प्रवेश करता हूं तो बाबा कहा जाता है, क्योंकि साकार मनुष्य भी है और बाबा भी है। तो फिर यहां ये तीन बार बाबा 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 क्यों बोला? दुनिया में बाबा किसको कहा जाता है? बूढ़े को भी बाबा कहा जाता है, जैसे ब्रह्मा बाबा। फिर ग्रैंडफादर को भी बाबा कहा जाता है। शिव ग्रैंडफादर बनता है? अरे बोलो जल्दी, बनता है? वो सिर्फ आत्माओं का बाप है कि ग्रैंडफादर है? वो तो सिर्फ आत्माओं का बाप है, कोई दूसरा संबंध नहीं। आत्मा आत्मा आपस में भाई भाई, बहन भी नहीं, भाई भाई और उनका एक बाप। वो बाबा नहीं, वो आत्मा वास्तव में जिसका नाम शिव है। किसका नाम? मेरी है बिंदी का ही नाम शिव है। वो बाबा नहीं है, आत्माओं का सिर्फ बाप है। फिर यहां बोला तीन बार बाबा 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 का परिचय देते रहो। ये कौन बाबा है? मनुष्य सृष्टि में जिसमें पहले पहले प्रवेश करते हैं वो क्या हुआ? बाबा। फिर दूसरा कौन हुआ है? जिसके मुख से गीता ज्ञान सुनाया, वृद्ध को भी बाबा कहा जाता है ना, उसमें भी निराकार साकार का मेल था या नहीं? है, चलो दुनिया का बाबा नहीं, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का तो बाबा है कि नहीं है? है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी पहले पहले वो ही बाबा है, क्योंकि जो ब्रह्मा की वाणी सुनकर के ब्राह्मण नहीं बनते, पहले क्या चाहिए? ब्राह्मण चाहिए। तो जो ब्राह्मण बनते हैं ब्रह्मा की वाणी जिसे गीता ज्ञान कहते हैं, भगवान का सुनाया हुआ गीता ज्ञान, उनके लिए भी बेसिक ज्ञान लेते समय दादा लेखराज ब्रह्मा क्या हुआ है? बाबा हुआ। फिर तीसरा बाबा? बाबा तो हुआ, लेकिन क्या वो बाबा हुआ जिससे वर्षा मिलता है? अरे ग्रैंडफादर से क्या मिलता है? फादर का वर्षा मिले या न मिले, लेकिन ग्रैंडफादर का वर्षा जरूर मिलता है। तो वो राम वाली आत्मा जो अगले जन्म में आकर के गीता ज्ञान सुनती है, ब्रह्मा के मुख से सुनाया हुआ गीता ज्ञान, तो राम वाली आत्मा या उसके जो भी फॉलोअर्स हों, उनका बाबा हुआ या नहीं हुआ? कौन? ब्रह्मा बाबा। फिर तीसरी बार बोला बाबा, बाबा, बाबा और बाबा। पहली बार बोला कौन से ब्रह्मा के लिए? बोला परम ब्रह्म के लिए। बोला किसके लिए? जो पहले थे, पहला ब्रह्मा है। उसके लिए बोला। दूसरी बार दादा लेखराज ब्रह्मा के लिए बोला। तो बाबा का तो वर्षा मिलता है ना, परम ब्रह्म के द्वारा पहला पहला वर्षा किसको मिलता है? है परम ब्रह्म के द्वारा पहला पहला वर्षा मिलता है जो विश्व पिता बनता है। आगे चलकर और ब्रह्मा के द्वारा वर्षा किसको मिलता है? युक्ति बताने का वर्षा मिलता है, माना ज्ञान का वर्षा मिलता है ब्रह्मा के द्वारा, या प्रैक्टिकल में स्वर्ग का वर्षा मिलता है? हैं? ज्ञान का वर्षा तो मिलता है ना। सबसे ऊंची चीज क्या है? गीता में तो आया है, नहीं ज्ञान सद सम पवित्रम ही विद्यते। इस दुनिया में ईश्वरीय ज्ञान के सिवाय दूसरा कुछ भी पवित्र चीज नहीं है। तो परम ब्रह्म के द्वारा ब्रह्मा को वर्षा मिला। पक्का पक्का युक्ति बैठ गई बुद्धि में क्या? कि मैं सतयुग में पहला पत्ता बनने वाला हूं। ये बात बुद्धि में बैठी या नहीं बैठी? बैठ गई। मुझे वर्षा मिलने वाला है, और युक्ति भी मिली। क्या मिली होगी? क्या युक्ति मिली होगी? है पहचान? क्या ब्रह्मा बाबा को वर्षा देने वाले बाप की पहचान हुई थी, यज्ञ के आदि में हुई थी। शरीर छोड़ते समय हुई थी, सूक्ष्म शरीर धारण करने के बाद वो युक्ति की बात उनकी बुद्धि में आई कि वर्षा किसका मिलेगा और किससे मिलेगा। ग्रैंडफादर का वर्षा बाप से मिलेगा। वर्षा किससे मिलता है? बाप से। अरे बाप के पास वर्षा होगा तभी तो देगा। कौन सा? बड़े से बड़ा वर्षा क्या है? है? बड़े से बड़ा वर्षा क्या है प्रैक्टिकल में? है? बड़े से बड़ा वर्षा है जो प्रैक्टिकल स्वर्ग बनता है, उस स्वर्ग में नारायण नर से बनना। वो अब बल नम्र का वर्षा। कैसा नारायण? चढ़ती कला का नारायण या उतरती कला का नारायण? सत्युग में जो भी नारायण होंगे पहले पत्ते से लेकर, वो सब उतरती कला के होंगे या चढ़ती कला के होंगे? हैं? उतरती कला के होंगे। क्यों उतरते हैं? अरे कोई कारण होगा ना। अरे क्यों कम होती हैं? हैं? सुख भोगते हैं। भोगी तो दुनिया में सभी आत्माएं हैं। वो क्या अकेले सुख भोगते हैं? दो प्रकार की आत्माएं बताई, क्षर अक्षर। अक्षर एक है और क्षर सारे ही हैं। क्षर माना क्षरित होने वाले, भोग भोग के, भोग भोग के सुख इंद्रियों के क्षरित होते रहते हैं, क्षीण होते रहते हैं। आत्मा की शक्ति क्षीण होती रहती है, वो तो सब ही। ऐसा भी कोई है जो युक्ति पाकर के, वो ज्ञान की युक्ति, वो जानकारी पाकर के, जब जानकारी जिस जीवन में पाता है उस ज्ञान उस जन्म में चरित नहीं होता। कोई है? अरे राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है, तो 500-700 करोड़ पत्तों में जो अव्वल नंबर पत्ता है उसका जन्म देने वाला बीज राम बाप को कहा जाता है। पहला पत्ता रूपी कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो जो मनुष्य सृष्टि में बड़े से बड़ा बाप है वो एक ही है कि जिस जीवन में उसे वो ज्ञान की युक्ति मिलती है। किससे है? कौन से बाप से? शिव बाप से जो युक्ति मिलती है उस युक्ति का, उस ज्ञान का पूरा अभ्यास करता है। अंश मात्र भी अधूरा अभ्यास नहीं। माना युक्ति को सबसे जास्ती महत्व देता है, ज्ञान को सबसे जास्ती महत्व देता है या नहीं है? देता है। और सिर्फ महत्व ही नहीं देता, प्रैक्टिकल जीवन में उस ज्ञान को 100% अनुभव करके भी देखता है या नहीं है? क्या अनुभव? जो बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाकर जाता हूं, जाता है या नहीं? तो अव्वल नंबर कोई निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी 100% बनता होगा या नहीं बनता? बनता है। जो बनता है उस बड़े बच्चे का नाम मनुष्य आत्माओं के बीच में बड़ी आत्मा का नाम ज्ञान के आधार पर ही छोटे बड़े होते हैं। उस आत्मा का नाम जो प्रसिद्ध होता है, पूजा जाता है, मान्यता प्राप्त है, जिसकी दुनिया में सबसे जास्ती मूर्तियां बनी हैं, खुदाइयों में भी वो साकार मूर्तियां, लिंग वो नग्न मूर्तियां सबसे जास्ती तादाद में प्राप्त हुई। भले उनका नाम शंकर कहा, तीर्थंकर कहा, वो नाम रूपधारी एक ही है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। क्या? शिव शंकर भोलेनाथ, या तो कहते हैं शिव शंकर भोले वाले, दो नाम हैं, शिव शंकर और टाइटल भी दो हैं, भोले वाले। कौन बोला? शिव भोला भंडारी। ऐसे तो कोई नहीं कहता शंकर भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। और फिर दूसरा टाइटल क्या है? भाले। एक कांटा ही कितना बड़ा दुख देता है। बबूल का कांटा तो हर हर बंबई की नगरी में सबसे जास्ती प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है या नहीं? मुरली में भी क्या बोला? कुछ बोला? बंबई के बारे में कुछ नहीं बोला। हा, दिल्ली है स्थापनाकारी, बॉम्बे है विनाशकारी। जैसा नाम वैसा काम। हर हर बम बम की वो नगरी है जहां ऐसे बम फटाके होते हैं ज्ञान के और अज्ञान की दुनिया के भी। एटम बम, वो बेहद का बॉम्बे, कि जितने भी बड़े बड़े कांटे हैं संसार के, बबूल जैसे कांटे ही क्यों न हो, उनका भी क्या हो जाता है? है खात्मा हो जाता है इस दुनिया से। और उन कांटों का भी बाप कौन हुआ? बड़े से बड़ा कांटा नहीं, शंकर नहीं, उसका हथियार भाला। बहुत टाइटल मिला हुआ है। शिव तो प्यार का सागर है। क्या है? प्यार का सागर है। उसको कभी भी दुख का सागर भगवान को कोई नहीं कहता। परंतु वो जिस तन में आता है वो निराकारी तो बनता ही है, लेकिन एकदम ऐसा निराकारी नहीं जैसे शिव 5000 वर्ष के लिए निराकारी दुनिया में बैठ जाता है। ऐसा बनता है? ऐसा नहीं बनता। कैसा बनता है? अरे सुख या दुख आत्मा बिंदी के द्वारा भोगा जाता है क्या? नहीं, शरीर के द्वारा ही भोगा जाता है। तो वो ऐसा शरीरधारी भी है जो शरीर से ऊंचे से ऊंचा सुख भोगता है और ऊंचे से ऊंची सृष्टि बनाता है। दुनिया में मनुष्य क्या करते हैं? है? इंद्रियों से सुख भोग कर चाहे देवताएं हों चाहे मनुष्य हों राक्षस हों सृष्टि तैयार करते हैं या नहीं? है? अपनी रचना परिवार बनाते हैं या नहीं? बनाते हैं। वो है सबका बाप। वो ऐसी सृष्टि रचता है जिस सृष्टि में सुख भोगने के बाद जो रिजल्ट आता है वो ऊंचे से ऊंचा रिजल्ट आता है। कैसा ऊंचे से ऊंचा रिजल्ट? देवात्माएं सचिव में जो सुख भोगती हैं उससे वो स्वयं भी नीचे गिरती हैं। जिन श्रेष्ठ ज्ञान इंद्रियों से आंख से सुख भोगती हैं तो चौथाई कला कम से कम नीचे गिरती है या नहीं? है? और फिर उनके बच्चे फॉलोअर्स वो भी नीचे गिरते हैं। लेकिन ये एक ही आत्मा ऐसी है। कैसी? जो देह की कोई इंद्रियों से सुख नहीं भोगती। क्या? देह विनाशी तो इंद्रियां भी विनाशी और उनका सुख भी विनाशी। वो सिर्फ संपन्न शिव समान आत्मा ही नहीं बनता। क्या है? संपन्न 5 तत्वों का 100% सात्विक पुतला भी है। क्या कहा? कैसा पुतला? 100% सात्विक पुतला। 5 तत्वों का संहार शरीर रूपी। तो जो 100% सत्य होगा उसका नाश होगा? है? गीता में ही लिखा हुआ है नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्य। सत्य का कभी विनाश ही नहीं होता। तो अगर 5 तत्वों का कोई चोला 100% सात्विक है तो उसका विनाश होना चाहिए? है? नहीं होना चाहिए। वो एक ही चोला ऐसा है जो विश्व का बादशाह गाया हुआ है। बादशाह बनता है? है? बनता है? अरे चुपचाप। बनता है या नहीं बनता? बनता है। अच्छा उसका बाप बनता है? हैं, तो बाप समान कहां हुआ? शिव बाप क्या कहते हैं? मैं तुम बच्चों को आप समान बना के जाता हूं। तो जब शिव बाप प्रैक्टिकल में विश्व का बादशाह नहीं बनता, तो जो बाप समान बनेगा वो प्रैक्टिकल में विश्व का बादशाह बनता है, उसको विश्व की बादशाही का ताज दिखाया जाता है, हा? पार्वती को फिर भी ताज दिखाते हैं, शंकर को कोई ताज नहीं होता। ताज किस बात की निशानी है? जिम्मेवारी की ताज की निशानी एक बात, दूसरी है प्योरिटी की ताज की निशानी। तो वो प्योरिटी का ताज धारण करता है या विषपात्र दिखाया जाता है उसके चित्रों में? सारे संसार का विष पीता है, क्या क्या बताया? सारे संसार का विष पीता है, इतना बड़ा विष पाई। विष किसे कहा जाता है? पराई स्त्री और पर पुरुष के सेवन को क्या कहा जाता है? विष कहा जाता है। जो ऐसा करते हैं वो बड़ी तेजी से नीचे गिरते हैं। गिरते हैं या नहीं गिरते हैं? और वो गिरता है? हाँ, गिरता नहीं। अरे विष पीता नहीं? अरे पीता भी है, गिरता भी नहीं, ये कैसे? उसकी यादगार एक ही वृक्ष दिखाया जाता है, जिसका फल बहुत ऊंचाई पर लगता है। उसका नाम क्या है? नारियल। मना विषपाई तो है, जिनको ये स्थूल आंखें हैं, इन स्थूल देह की आंखों से जो देखते हैं उनको रियल दिखाई पड़ता है या नारियल दिखाई पड़ता है? उनको नारियल दिखाई पड़ता है, रियल पार्ट दिखाई नहीं पड़ता। क्या रियल पार्ट क्या होता है? त्रिमूर्ति के चित्र की व्याख्या पिछले लगभग एक सप्ताह से बाबा मुरली में दे रहे हैं, पूछ रहे हैं बच्चों से, बता भी रहे हैं कि त्रिमूर्ति के चित्र में वो चित्र कौन सा है जो रियल निराकारी पार्ट बजाने वाला है, है? शंकर याद में बैठा हुआ है, शंकर बुद्धि में घर कर गया, क्योंकि मूर्ति है ना हाथ पांव वाली, इंद्रियों वाली, और हम भी इंद्रियों वाले, जैसे को तैसा पसंद आ जाता है, आता है कि नहीं? बाबा भी मुरली में क्या बोलते, कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद, और शिव बाबा को, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। बताओ त्रिमूर्ति के चित्र में वो कौन सा शिव बाबा है? शंकर तो खुद ही याद में बैठा है। पुरुषार्थी है या पुरुषार्थ पूरा हो चुका है? तो वो निराकारी 100% हुआ है? 100% निराकारी होता तो उसको इंद्रियां नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि जो 100% निराकारी आत्मा बनती है वो इंद्रियों का सुख नहीं भोगती। और शंकर को तो इंद्रियां, अरे बोलो, दिखाई जाती है कि नहीं दिखाई जाती? चित्र चरित्र की यादगार दिखाता है। तो त्रिमूर्ति में बताओ ऐसा कौन सा चित्र है जो विचित्र भी है, दिखाया तो गया है मंदिरों में, यादगार मंदिर हैं, दिखाया गया कि नहीं? क्या कर्म कर रहा है? दुनिया के लोग जो कर्म करते हैं वो ही कर्म कर रहा है या कोई दूसरा कर्म कर रहा है? अरे बताओ, दूसरा कर्म कर रहा है? दुनिया वाला ही कर्म तो कर रहा है, नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो दुनिया का कर्म कर रहा है, दुनिया वालों का जैसा ही कर्म कर रहा है, तो दुनिया वालों की तो पूजा नहीं होती? होती है। उसकी पूजा क्यों करते हैं? किसलिए? अमोघ भी है, शंकर है वो, तो दुनिया वाले कहते हैं, क्योंकि दुनिया वाले देहधारी हैं, इंद्रियों वाले। तो जो खुद इंद्रियों वाले हैं, इंद्रियों का सुख भोगने वाले, वो शंकर के लिए भी कहते हैं अमोघ वीर्य है। अरे इंद्रियों से चाहे ज्ञान इंद्रियां हो चाहे कर्म इंद्रियां हो, अगर उनसे शक्ति क्षीण नहीं होती है सुख भोगते समय, क्या कहा? शक्ति क्षीण नहीं होती है तो उसे अमोघ वीर्य कहा जाता है। बराबर ना है? कहा जाता है कि नहीं? नहीं कहा जाता। अमोघ वीर्य माने किसी प्रकार की शक्ति क्षीण न हो, आंखों से सुख भोग रहा हो तो भी शक्ति क्षीण न हो, और कर्मेंद्रियों में भी जो प्रधान कर्मेंद्रिय है कामेंद्रिय, उससे भी सुख भोग रहा हो, कर्म कर रहा हो तो भी शक्ति क्षीण न हो। और ऐसा भी वर्तमान काल में दुनिया में कोई मनुष्य नहीं हो सकता। क्या कहा? जिसकी कभी भी इंद्रियों में क्षीणता ना आती हो। अच्छा, चित्र देखे शंकर के? आजकल वो चित्र निकले हैं, पहले नहीं निकले थे, पट पड़ा हुआ है, जैसे पट रानियां पट में गिरती हैं। शंकर शंकर के रूप में ब्राह्मणों की दुनिया में कब से प्रत्यक्ष होता है? जल्दी बोलो, आगे आके बैठ जाओ, आगे आके बैठ जाओ, आराम से, डरो मत। अरे डरा कैसे, बोलो, ये बाबा का सभा है। हाँ, यहाँ सामने बैठो। जो शंकर शंकर नाम से संसार में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है वो कब से?
संक अभी एक बात बताऊंगा, शिवरात्रि का कथा होता है ना, तो पहले शिवलिंग को काला लिंग दिखाई पड़ता है, काला लिंग माना उसमें मुंह नहीं दिखाई पड़ता, तो वो शिवरात्रि है, काला काला है, सिर्फ उसको वो फूल नहीं कुछ नहीं चढ़ाता है, तो बाद में पूरा पूरा पूजा होने के बाद मुंह डालता है, माना वो पतित से पावन हो गया तो शिव दिन हो गया, वो शिवरात्रि।
आप कहते हैं जो अमोघ वीर्य है वो पतित से पावन बन गया, इसलिए वो कब से बन गया?
उनकी वीर जब रोशनी बदल करके ऊपर चढ़कर वो जटा है ना, जटा माने क्या,
ज्ञान की जटा है, हाँ ब्रेन,
ब्रेन की सही है, बाल है,
हाँ
उसमें अपान निकलता है, ब्रेन
हाँ निकलता है,
उसका अपान है,
हाँ निकलता है,
उससे पकड़ता है ज्ञान गंगा,
हाँ गंगा निकलती है, गंगा निकली ऐसे कैसे? अरे गंगा निकलती है अंत में, मुरली में क्या बोला, ज्ञान गंगाएं निकली हैं अंत में, बीच में या पहले?
तो बाप पहले स्थूल वीर को जब चढ़ाता है तब बाजू में आता है गंगा, बाद में यही नहीं चढ़ाया तो गंगा कैसे आता
है? तो चढ़ाया है या अभी नहीं चढ़ाया है?
नहीं चढ़ाया
तो हो गया ना, शंकर नहीं है ना?
हाँ ये प्रजापिता है, शंकर नहीं,
प्रजापिता पतित का नाम,
हाँ क्योंकि
शंकर जो अमोघ वीर है, बदलते जाओ रिकॉर्ड करते जाओ,
नहीं
अभी कहते हो कि शंकर अमोघ वीर है, मैं कहता हूँ दुनिया में कोई भी अमोघ वीर अभी मनुष्य नहीं बना है, कुछ न कुछ औरों का ज्यादा होता होगा, उसका कुछ न कुछ, कुछ न कुछ कभी न कभी औरों का सप्ताह में, दो सप्ताह में, दो दिन में, चार दिन में चरण होता होगा, उसका कुछ न कुछ टाइम नुदा हुआ है कि जब तक वो पुरुषार्थी है, याद का पुरुषार्थी है, कैसा पुरुषार्थी, ऊपर मन बुद्धि रूपी आत्मा को ले जाने का पुरुषार्थी, जो गीता में कहा है उद्धरेत आत्मना आत्मानम ना आत्मानम अवसादयत, ये मन रूप बुद्धि रूपी जो आत्मा है बिंदु, उद्धरे हरण करके जबरियन ऊपर ले जाना चाहिए, मन बुद्धि रूपी आत्मा ज्योति बिंदु को नीचे नहीं गिरने देना चाहिए, तो याद में बैठा हुआ है माने बार बार नीचे गिर रहा है या नहीं गिर रहा है, है? गिर रहा है ना, तो अमोघ वीर हुआ, अब वहीं जाके बैठ जाओ,
शंकर नहीं है,
क्या
शंकर नहीं है, शंकर
आप पक्के बात कर लो नहीं है,
महादेव हो जाएगा तो तब वो महावीर,
न वो देवता है इस दुनिया में कोई भी मनुष्य, और न कोई शंकर है, क्योंकि चित्र बताते हैं कि उनको इंद्रियों के घोड़े दिखाए गए, इंद्रियां दिखाई गई, वो इंद्रियां निराकारी स्टेज वाली नहीं बनी है, तो शंकर को वो रूप नहीं कहेंगे जिसका परिचय बाबा दे रहे हैं मुरली में, इसीलिए शास्त्रकारों ने लिखा है क्या क्या, ब्रह्मा को भी नमन नहीं करता हूं, गुरु है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, उसको मैं ऊंचे से ऊंचे भगवंत को मैं नमन करता हूं, कोई बात शास्त्रों में लिखी हुई है, शंकर को तो इंद्रियां दिखाई जाती हैं, इंद्रियों में बंधायमान दिखाया जाता है, जो इंद्रियों में बंधायमान है वो पुरुषार्थ करेगा ना, निराकारी बनेगा, संपूर्ण निराकारी बन जाएगा तो उसको इंद्रियों की स्मृति आएगी, आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। तो बताया त्रिमूर्ति के चित्र की 6-7 दिन से व्याख्या हो रही है मुरली में। बाबा बता रहे हैं त्रिमूर्ति के चित्र में, समझाए भी रहे हैं ऊंचे से ऊंचा भगवंत कौन है। बच्चे गफलत में आ जाते हैं। क्या गफलत? कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद। ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं ब्रह्मा बाबा कभी भी चरित नहीं होते थे। अरे चरित नहीं होते थे तो इंद्रिय जीते जगत जीत बन गए क्या? नहीं बने ना। तो फिर बताया कि वो स्वरूप कौन सा है जो सार्वभौम है दुनिया में, सारी दुनिया में उसकी यादगार मिल रही है, मंदिर भी बने हुए हैं, मूर्तियां भी मिल रही हैं। तो बुद्धि चली जाती है देहधारी की तरफ, ब्रह्मा विष्णु शंकर की तरफ। अरे ये सूक्ष्म शरीरधारी हैं या नहीं है? हैं? सूक्ष्म शरीर भी तो शरीर ही है ना। सूक्ष्म शरीर शरीर नहीं है बापट्ठे। ज्योति बिंदु आत्मा शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर तो शरीरधारी ही है। और सूक्ष्म शरीर ज्यादा पावरफुल होता है कि स्थूल शरीर ज्यादा पावरफुल होता है? हैं? सूक्ष्म शरीर ज्यादा पावरफुल होता है। तो जो ज्यादा पावरफुल होगा उसमें ज्यादा संकल्प शक्ति होगी, वाचा की शक्ति होगी, कर्मेंद्रियों की शक्ति होगी कि स्थूल शरीरधारियों में होगी? हैं? देखो कोई में देखा होगा भूत प्रवेश करता है, तो जिसमें भूत प्रवेश करता है वो लुंजुम बुंजुम होता है, और जब भूत प्रवेश करता है तो उसमें कई गुनी ताकत आ जाती है। कहां से आती है? सूक्ष्म शरीर से आती है। तो बताया बाबा तो बता रहे हैं, कितने साल से बताते चले आ रहे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भी बताते चले आ रहे हैं, वो भी फॉलो तो करती हैं बच्चा बुद्धि से। बाबा कहते हैं सबसे पहले ऊंचे से ऊंचे भगवंत का परिचय लो, इधर उधर की बातें करते रहते हैं, चारों चारों चित्र समझाते रहते हैं। बाबा कहते बाप का परिचय बुद्धि में नहीं बैठा है तो रवाना कर देना चाहिए, आगे बढ़ाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे कुल का है ही नहीं। ऊंचे ते ऊंचे भगवंत ने जो प्रैक्टिकल में सृष्टि रची है उस कुल का नहीं है, इसलिए बगैर देना चाहिए। कहे कि हमारी बुद्धि में बैठा है, निश्चय पत्र लिख करके दे तो मान लेना चाहिए, भले झूठा देता हो। जैसे आजकल बहुत निकलेंगे डायरेक्शन निकला कड़क, डायरेक्शन तो पहले से भी मुरली में था, क्या हंस बगुले इकट्ठे रह नहीं सकेंगे, लेकिन लिख लिख करके दे रहे हैं स्टाम्प पेपर पर कि हम बगुले नहीं बनते हैं, हम किसी भी प्रकार विकारी के संग के रंग में नहीं रहते हैं और विकारियों के हाथ का भोजन नहीं खाते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है? है फिर भी कोई कोई खाते हैं या नहीं खाते हैं? है लिख के दे देंगे और आते रहेंगे। नहीं समझते हैं ये ऊंचे से ऊंची राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी माने संगठन, राजाओं की धारणा शक्ति का संगठन। इसलिए झूठे झूठे भी लिख करके दे देते हैं, क्या अंजाम होगा उनका बाद में। तो बताया, बात चल रही थी कि सबको बाबा का परिचय देते रहो। जिसको सर्वव्यापी का ज्ञान भरा हुआ है, दुनिया से जो भी आते हैं उनकी बुद्धि में कौन सा ज्ञान भरा हुआ है? भगवान सर्वव्यापी। और यहां ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग होती है, तो कोई गुप्त ब्राह्मणों का होगा ना जो ये साबित करने वाला हो कि भगवान एक व्यापी नहीं है, सर्वव्यापी है। ऐसा ब्राह्मणों की दुनिया में कोई ग्रुप है, कोई संगठन है? हैं? क्या कौन है? हाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं कि एक व्यापी नहीं है। क्या वो दीदी दादियों में भी व्यापक है, दादाओं में भी व्यापक है? इसलिए श्रीमत का मतलब ये नहीं है ऊंचते ऊंच की मत, भगवंत की मत, ऊंचते ऊंचा भगवंत। उसे पहचानो या ना पहचानो, ना हम पहचानते हैं, लेकिन जो भी गुरु गद्दी पे बैठते हैं वो सब हमारे भगवान हैं। भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? अरे जो गुरु गद्दे पे बैठा, एक गुरु मर गया, ब्रह्मा गुरु मर गया है, कुमार का दादी गद्दी पे बैठी, बस उसी की मत पर चल पड़ते हैं। बाप तो कहते हैं क्या, एक सदगुरु निराकार। कौन? एक सदगुरु, सच्चा गुरु भी है और निराकार भी है। अरे गुरु दलाल होता है या नहीं? सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। दलाल साकार होता है या निराकार? साकार होता है, माने वो सदगुरु भी है, साकार भी है और निराकारी स्टेज भी धारण कर लेता है। जो निराकारी स्टेज धारण कर लेता है उसकी पूजा होती है मंदिरों में। सबसे ज्यादा पूजा, सबसे ऊंची मान्यता शिव के पुराने मंदिरों में देखें, मुखिया शिवलिंग बीच में बैठा है और आसपास चारों तरफ देवताएं बैठे हैं, देवी देवताएं। उन देवी देवताओं के बीच में मुख्य स्थान पर महादेव शंकर को बैठा दिखाया जाता है। ऐसे ही है ना? तो सब जो चारों ओर बैठे हैं उनकी नजर किसके ऊपर है? है शिव बाबा के ऊपर, महादेव के ऊपर नजर है, बीच वाले के ऊपर नहीं। जो शिवलिंग बीच में रखा हुआ है उसके ऊपर नजर नहीं है, है? हाँ, मुखिया के ऊपर सबकी नजर है। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो वो बाबा इशारा दे रहे हैं कि वो कौन है त्रिमूर्ति के चित्र में। बल ब्रह्मा कुमारियां भी बाबा के डायरेक्शन को फॉलो करती रही। जो बाबा ने कहा पहले बाप का परिचय दो, लेकिन वो स्वयं बाप को जानती नहीं, तो क्या करती है? वो ही 32 किरणों वाला चित्र और वो ही निराकार ज्योति बिंदु, वो समझते ही नहीं कि गुण और अवगुणों का भंडार साकार होता है या निराकार होता है? वो अगुण है निराकार या सगुण है? वो तो अगुण है, निर्गुण है, उसमें ना अच्छा गुण है और ना बुरा गुण है। तो वो कौन है जिसके लिए मुरली में बोला है कि स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? वो स्वर्ग की दुनिया का भी बाप है, रचयिता है, और नरक की दुनिया का भी रचयिता बाप है। दोनों प्रकार की दुनिया के ऊपर उसका आधिपत्य है। वो है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, ऊंचे ते ऊंचा और नीचे ते नीचा। ये टाइटल निराकारी दुनिया का है या साकारी दुनिया का है? है साकारी दुनिया का है। तो साकारी दुनिया में कोई साकार होना चाहिए जो शिव की तरह आत्मिक निराकारी स्टेज में टिक जाए। पुरुषार्थ संपन्न होने के बाद की बात है, शंकर की बात नहीं है। दुनिया ने तो शिव शंकर को मिला के एक कर दिया, वो तो अज्ञानी है। हम भी एक कर दें हैं? शिव अलग है और शंकर, शंकर अलग है। दोनों में कितना फर्क है, नाम के अर्थ में कितना फर्क है, रूप में कितना फर्क है, और गुण में कितना फर्क है। वो सारे संसार का कल्याण कर देता है। कौन? शिव। सभी मनुष्य आत्माओं को सत्य का परिचय देता है। 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं इस संसार रूपी सच्ची जो है उसमें कौन सर्वोपरि सत्य है उसका परिचय देता है। किसका, किसका परिचय है? इस समूची सृष्टि में प्राणियों की जो सृष्टि है उसमें सर्वोपरि सत्य कौन है? जो झाड़ के चित्र के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया, जहां से होकर के सारी मनुष्य आत्माएं दिखाई गई है, वहां से होकर के निराकारी धाम में पहुंचती है। और बाप कहते हैं निराकारी धाम को तुम इस सृष्टि पर उतार लेते हो। कहा या नहीं कहा? तो कौन सी जगह है, कौन सा स्थान है, कौन सा व्यक्तित्व है जिसमें वो निराकारी आत्माओं की दुनिया उतर आती है, जिसके लिए गीता में बोला है मेरी अव्यक्त मूर्ति के द्वारा सारी दुनिया व्याप्त है। लेकिन अर्थ नहीं समझा। जैसे बीज सारे पत्तों में, सारी टहनियों में, सारे फलों में, सारे फूलों में बीज व्याप्त होता है या नहीं व्याप्त होता है? हैं? बीज व्याप्त होता है, है कि उसकी शक्ति व्याप्त होती है? शक्ति व्याप्त होती है। इसलिए गीता में कहा है ना हम तेषु, मैं उनमें नहीं हूं लेकिन वो सब मेरे में, सब मेरे में। तो झाड़ के ऊपर जो बैठा हुआ दिखाया गया है नंग धड़ंग, देह की स्मृति नहीं, ये दिखाने के लिए नंगा दिखाया है, देह की इंद्रियों की स्मृति नहीं, वो कहता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। शिव ज्योति बिंदु नहीं कहता है कि मेरे मन में समा जा। उसको मन है नहीं है, वो कैसे कहेगा मेरे मन में समा जा। वो तो अमन है, वो कभी विचार सोच विचार करता ही नहीं। वो सोचता है या असोचता है? वो तो असोचता है, उसे सोचने की दरकार ही नहीं। वो तो जन्मन के चक्र में भी नहीं आता है, वो तो ऑलरेडी त्रिकालदर्शी है। उसे अपने बारे में सोचने की क्या दरकार? तो वो जिसमें प्रवेश करता है वो मन वाला है, मनुष्य है, मनुष्य शक्ति का बाप है। उस मनुष्य तन के द्वारा बोलते हैं मन मना भव। तो बोलने वाली आत्मा कौन है? परम ब्रह्म है। मेरे मन में समा जा, अर्थात जितना संकल्प चलता है अलग अलग सबके मन में, या एक ही संकल्प चलता है? अलग अलग संकल्प चलते हैं, तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना। तो जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के संकल्प चलते हैं, तुम सबके अंदर उनसे बोला मेरे मन में समा जा। मेरे मन में क्या है? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। माना वो किसको शिव बाबा कहता है? हा? अरे वो परम ब्रह्म शिव बाबा किसको कहता है? इसका मुरली में कोई जवाब है? है क्या जवाब है? हाँ, कि तू अकेला ही है जिसकी बुद्धि में बाबा कहने से कौन याद आवेगा? शिव ही याद आवेगा, बिंदी ही याद आवेगी। तेरे लिए बिंदी ही बाबा है क्या? और सबके लिए बिंदी बाबा नहीं है, स्पेशल तेरे लिए वो बिंदी जिसका नाम शिव है, वो बाबा है। इस आधार पर, क्योंकि तेरे को वो बड़े से बड़ा वर्षा मिलता है ज्ञान का। किसे? जो ज्ञान का भंडार है। कैसा भंडार? अकूट भंडार। सारा भंडार ज्ञान का वो निकाल लेता है तो भी संपूर्ण बचता है, खुटता ही नहीं। कौन निकाल लेता है? परम ब्रह्म। तो बोला जैसे परिवार बनता है, भगवान भी इस शक्ति को वसुधैव कुटुंबकम बनाने आया है। बनाता है कि नहीं? तो पहली पहली रचना किसको बनाता है? है? परम ब्रह्म को बनाता है। जिसको रचना बनाता है उस पर आशिक होकर आता है कि माशूक बनकर आता है? है आशिक होकर। मासूक बनकर क्यों नहीं? अरे आशिक बनकर इसलिए आता है कि दुनिया में जितने मनुष्य होते हैं पुरुष, वो पुरुष ही आशिक बनते हैं, क्योंकि सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है, जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। सहज हो जाए तो अच्छा, नहीं हो जाए तो पीछे पड़ जाते। तो आशिक हुए ना, तो भगवान किसके ऊपर आशिक होकर आता है? है परम ब्रह्मा, मैं जिसे मैं प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता। तो सवाल यह था वही आशिक क्यों बनता है? पहला जो गाया जाता है गीता में भी है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस, मैं जो पार्ट बजाता हूं सारी दुनिया के सब मनुष्य वो ही पार्ट बजाते हैं। क्या पुरुष क्या पार्ट बजाते हैं? आशिक का या मासूक का? है आशिक का पार्ट बजाते हैं। तो वो आशिक है बड़े से बड़ा किसका? शिव बाबा का। शिव बाप का नहीं, वो तो खुद ही है। किसका बड़े से बड़ा और पहले से पहला आशिक है? है शिव बाबा का आशिक। सवाल था वो ही क्यों है? अरे जवाब होगा कि नहीं? वो इसलिए है कि वो परम पुरुष है। क्या सब पुरुष दुर्योधन दुशासन तो है, आशिक बनते हैं, पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो कैसा पुरुष है? है परम पुरुष है। उससे ऊंचा उससे परे कोई भी पुरुष माने आत्मा नहीं है। पुरु माने शरीर रूपी पुरी, अश्य माने चयन करने वाला, शरीर रूपी पुरी में आनंद करने वाला। वो सृष्टि पर आता है, पतित तन में आता है तो भी दुखी होता है? क्या परेशान होता है? दूसरों को परेशान करता है? नहीं, आराम से रहता है ना, तो परम पुरुष हुआ ना। तो परम पुरुष है माना बड़े से बड़ा पुरुष, माने बड़े से बड़ा क्या है? पीछे पड़ने वाला। किसके? मासूक के। तो जिस मासूक के पीछे पड़ता है उसको कब्जे में कर लेता है। पति का काम क्या है? है तन मन धन सब कब्जे में कर लेना। तो कब्जे में कर लेता है तो जिसको कब्जे में किया उसको अपनी सारी संपत्ति पहले पहले सौंपता है या नहीं सौंपता है? है अरे परिवार में कुटुंब में सच्चा पिता कौन होता है? है सच्चा पति कौन होता है? जो अपने धन की अपने कमाई हुई प्रॉपर्टी की सारी जानकारी किसको दे? है पत्नी को दे। तब पक्का प्रवृत्ति मार्ग वाली हुआ, पक्का पति है, रक्षक है, क्योंकि अपनी सारी प्रॉपर्टी पहले पहले किसको सौंपता है? है परिवार का पोषण करने के लिए किसको? परम ब्रह्म माता को सौंपता है। तो माता के अंदर उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है निराकार आत्माओं के बाप की, निराकार आत्माओं का बाप, निराकार बाप, उसकी क्या प्रॉपर्टी है? ज्ञान। निराकार से निराकारी ही बरसा है ना, वही प्रॉपर्टी है ना। तो सारी प्रॉपर्टी किसको देता है? पहले पहले माता को देता है। वो सच्चा पति है, सारी पावर माता को देता है परिवार का पोषण करने के लिए, जन्म देने के लिए। तो ऐसे ही है, शिव बाप आते हैं तो परम ब्रह्म को पवित्रता की सारी पावर सौंपते हैं या नहीं सौंपते हैं? है सारी शक्ति सारी ऊर्जा सौंप देते हैं। फिर मां क्या करती है? है हाँ, अपने जो नंबरवार बच्चे हैं, बच्चे नंबरवार हैं ना, उन नंबरवार बच्चों को, उनमें भी जो पहले नंबर का बच्चा है, पहले नंबर का पत्ता है, उसको सृष्टि रूपी नई रचना की सारी जिम्मेवारी सौंपता है या नहीं सौंपता है? सौंप देता है। यहां भी ऐसे ही है, वेद की ब्राह्मणों की दुनिया में भी शिव बाप उस परम ब्रह्म रूपी आत्मा को सारी प्रॉपर्टी जब सौंप देते हैं और वो ग्रास भी करता है प्रैक्टिकल जीवन में, युक्ति तो दे देते हैं, ज्ञान तो दे देते हैं, लेकिन उस युक्ति को प्रैक्टिकल में धारण भी तो करना है, तो धारण करने में टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? हथेली पे आम तो नहीं जमाया जाता। 63 जन्म की आदत है देह का सुख भोगने की, कर्म इंद्रियों का सुख भोगने की, इसलिए टाइम दिया जाता है। शूटिंग पीरियड में टाइम नुदा हुआ है। क्या टाइम नुदा हुआ है? श्रीमत के ऊपर चलेंगे तो ऊंचे चढ़ेंगे, और मनमत पर या मनुष्य मत पर चलेंगे तो क्या होगा? नीचे गिरेंगे। ये ऊपर चढ़ने की और नीचे गिरने की शूटिंग होती रहती है। उस शूटिंग पीरियड में जो आत्मा पहले पहले जो मनुष्य सृष्टि के बाप का पहला पत्ता पढ़ाई पढ़ने के बाद पूरी जानकारी लेने के बाद, पूरी युक्ति जानने के बाद सबसे तीखा जाता है, उस पहले पत्ते को बाप क्या करता है? सारी राजाई, सारी प्रॉपर्टी दे देता है। इसलिए कहा जाता है कृष्ण के लिए, ये भी कहते हैं कि नारायण का राज्य सतयुग में था, फिर ये भी कहते हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव, जो कृष्ण है वो ही नारायण है। लेकिन भक्त ये नहीं जानते वो कौन सा नारायण है, है नर से प्रिंस बनने वाला नारायण है, बाद में नारायण बनेगा, या उसी जीवन में नर से नारायण बनने वाला है? ये राज बाप बताते हैं कि वो युक्ति कौन सी है, जो युक्ति आत्माओं का बाप बताते हैं। क्या युक्ति? अपन को आत्मा समझ, मुझ बाप को पहचानो, क्या मुझे प्रैक्टिकल कर्म करने वाले बाप को पहचानो, तो मूर्ति कर्तव्य है ना, उसका काम करता है कि नहीं है? नई दुनिया की राजधानी की स्थापना भी करता है, उस राजधानी के फाउंडेशन डालने के समय उस फाउंडेशन की पालना भी करता है। अभी फाउंडेशन पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, पालना भी करता है। फिर अगर जो फाउंडेशन डाला है उसमें जो भ्रष्ट पार्ट बजाने वाले, उनका विनाश भी करेगा या नहीं करेगा? जो श्रीमत पर श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ को पहचानने के बावजूद भी स्टाम्प पेपर पर निश्चय पत्र लिखने के बावजूद भी अपनी मत पर या मनुष्यों की मत पर या देहधारी गुरुओं की मत पर चलते हैं या चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उनका विनाश करेगा या नहीं करेगा? है तो श्रेष्ठ आत्माएं जो शिव की अष्टमूर्तियां कही जाती हैं, सर के ऊपर रखे हुए 8 दाने दिखाए जाते हैं। उन मूर्तियों को निमित्त बनाता है संपूर्ण नई राजधानी 100% तैयार करने के लिए। उस राजधानी का पहली पहली शतोप्रधान सात्विक दुनिया का वो खुद मालिक प्रैक्टिकल में नहीं बनता। क्या उस नई दुनिया की 8 दिशाओं को पालन करने वाला दिग्पाल, 4 दिशाएं और 4 कोण, जहां दुनिया के अन्य अन्य धर्मखंड बने हुए हैं, उनकी पालना का भार उनके ऊपर सौंपता है, खुद जिम्मेवारी उठाता है? है? खुद नहीं उठाता है, जो जिम्मेवारी उठाता है वो राजा ही भी लेता है। जिम्मेवारी नहीं उठाता तो जिम्मेवारी नहीं उठाने वाले को राजा ही नहीं मिलती, इसलिए वो तो विषपाई है अंत तक। वो पवित्रता की जिम्मेवारी नहीं उठाता, कौन उठाता है? अव्वल नंबर में कौन उठाता है? अरे कोई उठाता है कि नहीं? पुरुष उठाते हैं या माताएं कन्याएं उठाती हैं? माताएं कन्याएं उठाती हैं। तो माताओं कन्याओं में भी सर्वोपरि जिम्मेवारी उठाने वाली कोई माताएं कन्याएं होंगी या नहीं होंगी? कौन कौन है? है त्रिदेवों की 3 देवियां, जिम्मेवारी उठाती हैं या नहीं उठाती? उठाती हैं। फिर उनसे भी ऊंच कोई है या नहीं है? कौन है? हाँ, काशी नगरी, जो भगवान को बहुत प्यारी दिखाई गई है। क्यों? क्योंकि वो नई दुनिया का जो संगठन है ब्राह्मणों की दुनिया में तैयार होता है, उसका फाउंडेशन काशी नगरी के द्वारा पड़ता है, जो काश्य को धारण करती है। काश्य माने है? हाँ, योग, योग की पावर। क्या नाम दिया बाबा ने? योगिनी। तो अव्वल नंबर तो वो हो गई, परंतु वो योगिनी रुद्रमाला का मणका है या विजयमाला का मणका है? है रुद्रमाला का मणका है। जन्म जन्मांतर के जो स्वभाव संस्कार हैं, वो पुरुष वृत्ति के हैं, राजाओं के हैं या रानी के हैं? राजाओं के संस्कार हैं। और राजाएं कलयुग के अंत में आकर के, खासकर भारत के राजाएं, पतित व्यभिचारी बनते हैं या नहीं बनते हैं? बन जाते हैं। नंबरवार की बात है। तो रुद्रमाला में सब दुर्योधन दुशासन है, क्या है या नहीं? स्वभाव संस्कार से वो आत्माएं हैं जरूर, इसलिए विजयमाला में उसका नंबर नहीं आता। क्या किसका नंबर आता है? है पार्वती करो या लक्ष्मी कहो, उसका नंबर आता है। विजय का टीका लगाने के निमित्त बनती है क्या? विजय का टीका कन्याएं माताएं लगाती हैं युद्ध में बाहर जाते समय, पुरुषों को या पुरुष लगाते हैं माताओं को? कन्याएं माताएं विजय का टीका लगाती हैं। इसलिए आज भी दुनिया में कहीं न कहीं पुरुष ऐसे देखे जा रहे हैं जो विजय का क्या करते हैं, टीका लगाते हैं। किसी ने देखा या ना देखा? देखा। और माताएं आत्मिक स्मृति की बिंदी लगाती, क्योंकि जिनमें आत्मिक स्मृति नहीं होगी पक्की, देहवान होगा तो वो जौहर करेंगी है? जीते जी अपनी देह को योग की अग्नि में झोंक देंगी है? परंतु जो बिंदी बनती है संगम युग में, देवान को त्याग देती है, वो बिंदी बन जाती है और योगाग्नि के कुंड में अपने देवान को पूरा राख बना देती। संगम युग की बातें बेहद की हैं और दुनिया की बातें हद की। स्थूल रूप में भक्तों ने बातें उठाई तो देखो, नारायण कौन आत्मा बनती? जो जैसा नाम वैसा काम करके दिखाती है। कैसा नाम? नार अयन। नार माने ज्ञान जल, आया न माने घर। जो सारा जीवन कहाँ रहती है? ज्ञान जल में रहती है। ज्ञान जल ये कहता है इस शरीर के रहते रहते संगम युग में तुमको ब्राह्मणों को सेवादारी बनकर के रहना है या राजा बन के कंट्रोलर बनना है? है सेवादारी बनकर रहना। तो वो आत्मा जिसको फकीर के रूप में दिखाया जाता है, किसको? शंकर को। वो आत्मा विश्व का बादशाह गाई जाती है लेकिन स्वयं बनती नहीं है। बनती है प्रैक्टिकल में, दूसरों को बनाती है, खुद नहीं बनती। तो बोला कि बाप उस पाठधारी को अच्छी तरह से समझाते हैं, सबको यही कहो क्या कि उस बाप का वर्षा जो जीवन मुक्ति है वो सब एक जैसी नहीं ले सकते क्या? 84 जन्मों की सुख शांति की दुनिया में सभी आत्माएं नहीं रह सकती। जो मुरली में बोला है कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो 82-83 जन्म भी सुख में रहते हैं, सिर्फ 84वां जन्म ऐसा है जब बाप आते हैं। तो नियम है जो नीचे से नीचा गिरता है उसी को बाप क्या करते हैं, ऊंचे से ऊंचा उठाते हैं। बाकी ऐसे नहीं है कि संगम युग में नीचे गिरना है। अरे जितना नीचे गिरना था 83 जन्म में गिर चुका। कब था वो 83 जन्म? मनुष्य सृष्टि के बाप के लिए अरे संगम युग में था या नहीं था? तब वर्तमान में कौन सा जन्म है, 83वां या 84वां? 84वां जन्म है। इससे पहले का जो जन्म था वो 83वां जन्म था। उस जन्म में धोबी घाट का पार्ट समझ में आ गया, पूरा ज्ञान समझ में नहीं आया। तो वो धोबी घाट का शरीर रूपी कपड़े धोने का पार्ट पूरा बजाया, ज्ञान तो पूरा था ही नहीं। तो विजय मिलेगी है? नहीं विजय मिल सकती, फेल हो गया, बल फेल हो गया। सारी दुनिया एक तरफ और वो आत्मा एक तरफ अपने पार्ट पर डटी रही मृत्यु पर्यंत, लेकिन किसी के सामने झुकी झुकी नहीं। जो गाया जाता है देहं वा पातयामि है कार्यं वा साध्यम्, इस शरीर से वो काम पूरा नहीं करूंगा, तो आगे वो शरीर मिलना है या नहीं मिलना है? ब्राह्मण जन्म में जो ज्ञान लिया है वो कभी नष्ट तो होता ही नहीं, अगले जन्म में वो प्रारब्ध जाती है। और वही आत्मा दोबारा जन्म लेकर के इस सृष्टि पर आती है, जिसके लिए बाप मुरली में ब्रह्मा द्वारा घोषणा करते हैं कि मनुष्य सृष्टि का वो बीज रूप जो नर से डायरेक्ट नारायण बनता है उसका जन्म कब है? है आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ, माना 76 आता है। 76 में वो राम वाली आत्मा जैसे कृष्ण की आत्मा ब्रह्म का पार्ट बजाती है, वैसे ही राम वाली आत्मा बच्चा बुद्धि कृष्ण के बाप का पार्ट बजाती है। और संसार में खासकर ब्राह्मणों की दुनिया में नंबरवार प्रत्यक्ष होती है। होती है या नहीं? होती है कि ये राम की आत्मा है, ये मनुष्य सृष्टि का बीज है, प्रत्यक्ष होती है। अरे अरे प्रत्यक्ष होती है प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है या नहीं लेती है? है नहीं लेती? नहीं लेती कि मतलब सब इस बात में अनिश्चय बुद्धि है, निश्चय अनिश्चय के चक्र में डोल रहे हैं। जिनको यही पता नहीं है कि सन 76 के लिए नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया के विनाश की बात कही थी, जहां जहां पार्ट प्रत्यक्ष हो जाता है, जहां के लिए बोला टू लेट का बोर्ड लग जाएगा 10 साल के बाद। वो एक पैर एक युगल मूर्त आत्मा प्रत्यक्ष होगी, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेगी, तो क्या रिजल्ट होगा? टू लेट का बोर्ड। जो लक्ष्य था जीवन का, मनुष्य जीवन का, नर से अव्वल नंबर का नारायण बनना, उसमें टू लेट हो गए। बाकी ये पहली प्रत्यक्षता होती है उस पहली प्रत्यक्षता में
अभी तक भी भेद दिए गए हैं,
जिनको ये संशय पैदा होता है। क्या ये संपन्न पाठ है, भगवान का पाठ है, सदगुरु का पाठ है, सुप्रीम टीचर का पाठ है, मनुष्य सृष्टि के बाप का पाठ है या नहीं? बहुत से तो यही समझ बैठते हैं यही भगवान है। अरे बच्चा पैदा होता है तो बच्चा बुद्धि होता है या सालिम बुद्धि कहा जाता है? तो बच्चा बुद्धि की बुद्धि में सारी पढ़ाई बैठ जाती है कि टाइम लगता है? टाइम लगता है। तो बताया तुम बच्चों को रुद्रमाला के मणकों को, रुद्र वत्सों को, सारी सृष्टि की बीज रूप आत्माओं को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष का समय लगता है। तो बताओ संक्षेत्र में जन्म भले होता है, प्रत्यक्षता भले हो जाती है, लेकिन वो आत्मा संपन्न नहीं होती क्योंकि पढ़ाई पूरी नहीं होती। 40 वर्ष जब पूरे हों तो पहली आत्मा निकलेगी मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्माओं में से, जो संपन्न बनेगी। और बाबा ने ये भी बोला, बाप अकेला प्रत्यक्ष होता है क्या? अकेला जन्म लेता है, है? बाप बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होता है। तो कौन सा पहला बच्चा है जिसकी बुद्धि में ये बात फिक्स बैठ जाती है? क्या कि गीता का भगवान मैं नहीं हूं, गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ही है। जब बुद्धि में पक्का बैठेगा बाप का निश्चय, तब पढ़ाई शुरू होगी या पहले से ही पढ़ाई को मानता है? मानता है नहीं मानता ना? तो 40 वर्ष जब पूरे होते हैं तो बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है, तब तक 100% पक्की प्रत्यक्षता नहीं कहेंगे किसी के अंदर। इसीलिए निश्चय और अनिश्चय का चक्र चलता है या नहीं चलता है? है?
चलता है। कोई के अंदर न चलता हो तो हाथ उठाओ। सबको अनिश्चय बुद्धि की मौत मरना है क्या? आज नहीं तो कल अनिश्चय बुद्धि की मौत मरना पड़ेगा। अनिश्चय बुद्धि माने जन्म, बाप का बच्चा बना,
वो तो बन गए
क्या? नंबर वन बने तो नहीं, लेकिन कोई तो बच्चा बनकर के भी बाप के घर में जाकर के जन्म लेकर के भी घर में जाकर जन्म लेते हैं कि नहीं? बुद्धि की पेट की भट्टी में पलते हैं या नहीं पलते? उस गर्भ में पलते हुए बाहर का खाना दाना पानी लेते हैं या नहीं लेते? नहीं लेते, या बाहर अंदर जाते हैं वो गर्भ मां को बच्चे नहीं बन गया पेट के अंदर बच्चे बनते हैं ऐसे यहां भी होता है। चलो उड़ान खासा जन्म भी दे दिया तो ऐसे मुचुम पुण्यम प्रभावित आत्माएं पैदा होती है जो अभी अभी बच्ची की और रास्ते में दो चार लोग ऐसे मिल रहे अरे तुम कहां गए थे वहां से ऐसा 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 बस अनिश्चय इसलिए बात कहते हैं एक से ज्ञान सुनना चाहिए क्या और उनकी बातें एक कान से सुनो फालतू बातें क्या हिंदी में से दिखा दो सुनते हुए नहीं सुनो हियर नो इविल जैसा हमने धारण किया है और पहचाना है उस बात पर प्रति रहना चाहिए। क्या बोला भारतवासियों की खास बात क्या है कमजोरी है सुनाई बातों से भारतवासियों ने हाँ ये बात सही है। कोई द्वापर युग से इस्लाम धर्म का बाप आता है उसके बाल वर्ष आते हैं उनकी बातें सुनते ही प्रभावित हो जाए उनकी प्रजा बढ़ गई। कोई 250 वर्ष के बाद बुद्ध आते हैं उनके फॉलोअर्स आते हैं उनकी बातें सुनते हैं सुनकर के प्रभावित हो जाते हैं प्रभावित माने प्रजा ऐसे ही कोई द्वापर के अंत में आने वाले धर्म पिताओं से उनके फॉलोअर्स से प्रभावित हो जाए। कोई कलयुग के आदि में आने वाले धर्म के काम से प्रभावित हो जाते कोई मध्य में आने वाले गुरु नानक से प्रभावित हो जाते हर एक का अपना अपना टाइम होगा हुआ कोई पहले दूसरों की बात से प्रभावित हो जाते हैं जिससे कुछ बदल जाते और कोई ऐसे भी होंगे जो सब अनिश्चय बुद्धि बनने लग पड़ेंगे तो भी बाप का साथ निभाएंगे कोई से प्रभावित नहीं होंगे ऐसे से पर आग से नहीं निकले लेकिन माया तभी ऐसी है कि उन आग को भी नहीं छोड़ती उनकी भी बनी है देखो क्या साबित होता है अनिश्चय बुद्धि बनने वाले इस वर्तमान काल में सारे ही ब्राह्मण मृत्यु लोक में है या अमर लोक में है मृत्यु लोक से अभी क्या करना है काल कल्पित होना है काल के काल में जाना है फिर करना क्या है अरे लंबी आय भोगना है जब कमाल में ही शरीर छोड़ देना है लंबी जैसे अष्टदेव है सबसे लास्ट में जाकर के माया के काल हो गए पावरफुल आत्माएं हुई ना औरों की बातों के चक्कर में प्रभावित होने वाली उनकी प्रजा तो नहीं है ना तो यहां भी बताया एक बाप का परिचय दो करके उनकी प्रजा नहीं बनता है। यहाँ संगम युग में प्रजा भी बनेगा, तब हमें प्रकट होते हैं जब हमें जाएंगे जन्म लेगा। ऐसी प्रभावित होने वाली अगर आत्मा कोई यहाँ संगम युग में नहीं बनेगी तो बुरा ड्रामा में बनेगी बनेगी नहीं बनेगी। इसलिए इतने इतने आतताई विधर्मी विदेशी आत्मा भारतवर्ष में आए और भारत में आकर के पूछ दबा के क्या हुआ बात करे। प्रभावित किया या प्रभावित हो गए भागने वाले है क्या हुए प्रभावित हो गए उस विश्व पिता की प्रजा बन गए। वो उसके ऊपर जीत किसी भी जन्म में पाए नहीं सकते, वो है ही वो पात्र। साहित्यकार के रूप में ही जोड़े व्यास वाल्मीकि तुलसीदास मंत्र के ही जोड़े और कभी वो तो क्रांतिकार ही हुआ कबीरदास और कभी योद्धा मंत्र के ही जोड़े क्या जो हिंसा के युद्ध हुए हैं ना 2000 वर्ष में स्थिर हिंसक युद्ध में कभी उसने हार हार नहीं पाई। तो नाना रूपों में वो जन्म जन्मांतर हीरो पार्टी बजाता है, उस बाप का परिचय देते हो जिसको सर्वव्यापी का ज्ञान है बस और कोई ज्ञान जिनके मुख में देखो मुख में देखो कौन सा ज्ञान निकलता है पूछो भगवान क्या है कहाँ है कहेंगे सर्वव्यापी। मुझसे क्या निकलेगा सर्वव्यापी है। वो कितने भी बैठ करके डिबेट करेंगे वार्तालाप करेंगे वाद विवाद करेंगे क्योंकि हिस्ट्री में वो बहुत लंबे समय से ऐसा करके आए। इसलिए ये तीन चार में लिखा हुआ है अंतिम परिचय जो बाद में जोड़ी गई है उस ऋचा में लिखा हुआ है कि हे ईश्वर हम पहले तुम्हें सर्वव्यापी नहीं मानते थे और अब सर्वव्यापी। ये द्वापर युग की बात है इसलिए बोला कि बहुत समय से ऐसे कहते आए। पत्थर होती है ना श्री पत्थर होती है ये सुप्रीम गॉड फादर भी कहते हैं परम पिता भी कहते हैं ऊंचे थे ऊंचा बाप। दुनिया में जितने भी जिस धर्म के भी मनुष्य मात्र हैं अलग अलग धर्मों के अलग अलग बाप ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं ड्राइंग करते हैं उन ग्रेट फादर्स का भी वे ग्रंथ कौन आत्मा का बाप जिसमें प्रवेश करता है वही हुआ इस मनुष्य शक्ति में सभी जन्म पिताओं का बाप बापों का भी बाप ग्रंथ वेद वेद ग्रंथ फादर को कोई समझते ही नहीं है जिसमें भगवान एक व्यक्ति बन रहा है क्या तब तक भी है बच्चे तो पहले पहले यही एक बात देखो एक देवी है बच्ची अभी बच्ची की तरफ इशारा किया अभी वहां प्रेरण करेगी कहेगी वहां प्रायत का चित्र क्यों रखा हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट का है क्या ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है क्या हेवनली गॉड फादर है क्या हेवनली गॉड फादर क्यों कहा जाता है जरूर हेवन की रचना की होगी ना हेवन की रचना करने वाला कौन सा वर्षा देगा हेवन का वर्षा देगा तो एक प्रायश्चित को क्यों रखा हुआ है यहां ये स्वर्ग में गया या नरक में ही वो देखा है जन्म जन्मांतर तो उनको कहना चाहिए उनको ये तो ठीक है कि क्रिश्चियन से जितने भी इस दुनिया में है सब क्राइस्ट को फादर मानते हैं पर क्राइस्ट में क्राइस्ट से भी तो कोई ऊंचा बाप है ना बापों का भी कोई बाप है ना नहीं है अगर नहीं है तो हैवी टू गॉड फादर क्यों लिखते हो बाइबल हैवी टू गॉड फादर है वो फादर है ना वर्ष किसे मिलता है फादर से वर्ष हेवन का फादर क्यों कहा जाता है क्योंकि हेवन का वर्ष देता है वो हेवन का फादर हेवन बनाने वाला नाम हेवन क्यों रखा है बिल सारी दुनिया के ऊपर जीत पाने वाला है उसके मुकाबले सारी दुनिया हार जाती है उस आदमी इसलिए कहा शंकर जाप जहा जिन उतरे पार भूल सकल संसार गुरु नानक ने अपने लिए कह दिया या उनके भक्तों ने कह दिया वो नानक जाप जहां क्या ऐसा शरीर रूपी नैया या जहाज है इस संसार सागर में जिसकी याद में बैठ करके जिसकी याद में चढ़ करके बैठ करके सारा संसार पार उतर जाता है नहीं तो क्या होता है डूब जाता है वो फादर है ना फादर से क्या मिलता है वर्षा मिलता है तो वो फादर कौन है? वो धर्म के पाए तो निराकार को मानते हैं, उसके अलावा सुप्रीम फादर उसको मानते ही, वो निराकार से निराकारी वर्षा मिलेगा, ज्ञान का वर्षा मिलेगा या साकार है तो वर्षा मिलेगा। बाप कौन सा वर्षा देगा? धनवान होगा तब वो पति अधिपति, बाप होगा तो काय का वर्षा देगा, अरब का वर्षा देगा, खरब का वर्षा देगा, करोड़ का वर्षा देगा। जमींदार बाप हुआ तो काय का वर्षा देगा, जमींदार का वर्षा देगा। बाप के पास कौन सा भंडार है तो ज्ञान का ही वर्षा देगा था। निराकार आत्मा का निराकार बाप निराकारी ज्ञान का वर्षा देता है, और साकार मनुष्य शक्ति का साकार बाप इस साकार शक्ति पर स्वर्ग का वर्षा देता है। और फिर जो उसको नहीं पहचान पाते उनको नरक में आना पड़ता है या स्वर्ग में आते उनको नरक का वर्षा। तो वो फादर सबका फादर है, जिनको वर्षा मिलता है स्वर्ग का या नहीं मिलता है स्वर्ग का वर्षा उनका भी फादर है। सबका फादर नहीं देना, 200-250 करोड़ मनुष्य की ज्यादा से ज्यादा क्राइस्ट को अपना फादर मानती है, 500-700 करोड़ तो नहीं मानती, तो वो सबका फादर तो नहीं है। सबका फादर तो गॉड फादर है, वो तो इनकार पूरे और हम आत्माएं भी इनकार को ही करेंगे। तो हम सभी आत्माओं का इनकार को लिए आत्माओं का सभी आत्माओं का वो फादर जिसको ये आत्माएं पुकारती हैं, क्या क्या पुकारती है? ओ गॉड फादर पुकारती है ना, तो फादर वो है ना। लेकिन निराकारी आत्माओं का फादर है, निराकार वर्षा देता है या साकार वर्षा देता है? क्राइस्ट तो बाइबल से बोला है कि क्राइस्ट तो उसका सन है, क्या निराकार का सन है कहते हैं ना। तो जबकि सन है क्राइस्ट है, तो सन से फिर सभी संस को कैसे वर्षा मिलेगा? फादर के बच्चे से वर्षा मिलता है या फादर से वर्षा मिलता है? तो पूछो क्राइस्ट को फॉलो करने वालों को, जो क्राइस्ट को अपना बाप मानते हैं, जो क्राइस्ट कह रहे हैं वो कहता है उसके लिए कहा गया कि वो गॉड फादर का बच्चा है। तो जो खुद बच्चा है वो वर्षा देता है या फादर बच्चा वर्षा देता है? तो जैसे क्राइस्ट से पहले बुद्ध, उनके बारह वर्ष, अब्राहम उनके 5 वर्ष, वो ही तो बच्चे हुए ना, क्राइस्ट से पहले आएगा ना, पहले आए पीछे आने वाले वो तो क्राइस्ट हो गया, पीछे आने वाले हैं चाहे पहले आने वाले हैं, सब जो धर्म वाले बड़े बड़े आते हैं धर्म स्थापित करने के लिए, वो सभी तो बच्चे हैं ना, कि क्राइस्ट अकेला बच्चा है, सभी संसदीय हैं, हम भी क्राइस्ट के लिए कहते हैं वो भी सब है। अच्छा हम भी संत हैं क्राइस्ट के, परंतु गॉड फादर के तो सभी बच्चे हैं ना, ऐसे लिखा नहीं है बाइबल में, कैसे कि क्राइस्ट को याद करने से हेवन का वर्षा मिलेगा, लिखा है जो आत्मा तमो प्रदान बन गई है वो जरूर है कि सतो प्रदान बन जाएगी, ऐसे भी नहीं लिखा है ताकि कोई भी शास्त्र में ऐसा लिखाई नहीं है सिवाय से श्रीमद् भगवद गीता के, कि मुझे याद करने से स्वर्ग का वर्ष मिलेगा, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्ष मिलेगा, जीवन में रहते हुए भी दुख दर्दों से मुक्ति मिल जाएगी। तो गीता के भगवान जो कहते हैं और आकर के कहते हैं, अगर शरद व्यास भी होता तो आने की दरकार है, अरे अगर शरद व्यास भी होता तो आने की दरकार ही, वो आकर कहते हैं ना तो उन्हीं के ही शास्त्रों में होगा ना, उनका शास्त्र कौन सा है भगवान का, दुनिया में एक ही शास्त्र है जिसमें लिखा हुआ है श्रीमद् भगवद् गीता, भगवान का गाया हुआ गीत, और दुनिया के किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि भगवान के द्वारा गाया हुआ है। 5000 है छियासठ की बनी का सातवां, तो उनका शास्त्र तो है ही गीता, क्या नाम दिया शास्त्र, शास्त्र माने शासन करना, शास्त्र माने शासन करने का विधान, क्या राजा क्या करता है शासन करता है, तो राजा वही बन सकता है इस दुनिया में जो भगवान के द्वारा बनाए हुए शास्त्र, भगवान के द्वारा बनाए हुए विधान, संविधान हो संपूर्ण विधान, क्योंकि ईश्वर के द्वारा बनाया जाता है। उनका शास्त्र जो गीता है दुनिया में और कोई भी शास्त्र नहीं है जो शासन करना सिखाए, राजा बनाना सिखाए, और तो जो भी भरत की ताए और उनके फालुओं से दूर बन करके बैठते हैं सारा बात एक बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं, बलाद भारत में समझते हैं अंग्रेजों ने हमको स्वाधीन बना दिया, सारी सत्ता भारत की स्वाधीन बनाकर हमारे हाथ में दे दी, क्या ऐसा हुआ, हमारे अभी भी भारतवासी इस दुनिया में स्वाधीन है या विदेशों के अधीन है, तो इसके बाप का नाम निकाल कर प्रश्न का क्राइस्ट के बाप का नाम निकाल कर उन्होंने क्या किया बाइबिल में? हेविन का लाड किसको बताया है? चंद्र को बना दिया। मनुष्य का नाम डाल देने से फिर वो भक्ति मार्ग में यही जो चीज सब कुछ बातें हैं वो नहीं मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए शास्त्रों को कोई वो भी दुनिया के कोई भी धर्म वाला हो धर्म पिता हो मुसलमान हो उनको भी स्थिति ये कहो क्या कहो ऊंचे थे ऊंचा अल्लाह ऊंचे थे ऊंचा भगवान ऊंचा तेरा नाम गाया जाता है ऊंचा तेरा दान है ऊंचा तेरा धाम है कौन सा धाम परम धाम इसलिए ब्रह्मा पुत्र से आत्माओं का बाप शिव भगवान कहते हैं तो परम धाम को आप लोग को तुम बच्चे नीचे उतार देते हो तो काफी बात नीचे बनेगा कौन का बोलू हाँ संगम में संगम तो समय का नाम उतार देते हो हाँ साकार मनुष्य है नीचे से नीचे पाठ बजाने वाले है या नहीं नीचे पाठ होता जन्म जन्मांतर की जो उपाय किए रहे हैं पूरे हजार एक किस्तियां हैं सोलह हजार जो गोपियां दिखाई जाती है शास्त्रों में भगवान की गोपिकाएं भगवान के साथ इंद्रियों का गुप्त संबंध जोड़ने वाली वो स्त्रियां एक भगवान की बनकर के रहती है या फिर मंदिर है नहीं रहती वो और जन्मों में कोई और की स्त्रियां हैं स्त्रियों के साथ वो पराई है अनेक जन्मों की पराई है उन स्त्रियों के साथ क्या कहता है क्या कहता है इंद्रियों का संग करता है चाहे ज्ञान इंद्रियों को और चाहे सर्व इंद्रियों चपाई हुआ कि विचारी हुआ या नहीं हुआ विश्वपाई हुआ तो वो उच्च से उच्च हुआ या नीच से नीचे तरंग करने वाला हुआ अरे जोर देखे तो हुआ या नहीं हुआ जीत गया क्या जीत जाते करो गुजरान कृष्ण भगवान यदि संसाना भारत में अब मतलाना जब तुम राज्य माफन पाओगे तो चोरी हुई ना जब तुम राज्य माफन पाओगे जेल में तुम डाले जाओगे चोरी में जेल जेल में चक्की तुमको पड़े चलाना भारत में अब बतवाना बजे बजे गीत बनाए सारी बातें कैसे मालूम पड़े बच्चों झूठे गीत बनाए सच्चे बनाए तो साबित को किया ना, चोर को साबित हुआ ना, तो जो चोर है नीचे से नीचे है उसमें नीचे से ऊंचा अल्लाह आते हैं, युक्ति बताते कि तुम नीचे से नीच क्या कर्म करो, जो ऊंचे से ऊंचे बन करके तुम्हारी सारे संसार में पूजा हो, मूर्तियां बने, मंदिर यादगार बने और तुम सबसे ऊंची स्टेज में चले जाओ, अल्लाह हमारे ऊंची क्या आठ लोग में होता है, इस शक्ति में होता है, ऊंचे से ऊंचा बात है वो सबका वो रचयिता है कौन वो या वो वेद के दो बात है ना, एक वो और एक वो, किसकी तरफ इशारा किया, सबका रचयिता है, रचयिता निराकार होता है या साकार होता है, सबका जो भी जड़ जन्म संसार है इस दुनिया जब तुम्हें बुद्धि वाले प्राणी है या चैतन्य बुद्धि वाले मनुष्य है उन सबका बात है, क्या वो जल जन्म संसार कहां से जन्म लेता है, अरे कोई से पूछो तुम्हारा जन्म कहां से हुआ, किसने तुमको जन्म दिया, तो क्या कहेंगे मारे हमें जन्म दिया, बच्चा दुखी होगा तो यही जवाब देगा कि हमें किसने जन्म दिया, माने जन्म दिया, जैसे ब्रह्मा कुमार क्या कहती, क्या कहती हम अम्मा के बच्चे ब्रह्मा के बच्चे, अरे ब्रह्मा का भी तो नाम बताओ, तो जानती है तू कहा बता है, तो बताया जो सबका बाप है, तो जो बड़े बच्चे हो जाते हैं वो जानते हैं कि माँ जन्म तो देती है, ऐसी बच्चे जन्म देती है, लेकिन जब माँ के पेट में भी बच्चा देने वाला कोई और है या अपने आप ही करती है, कोई और है जन्मदाता वो ही बात, ऐसे ही असद है तो बेहद क्या सारी शक्ति जिसकी रचना है एक रचयिता बात जिस रचयिता बाप से ही सृष्टि के आद में सांप निकलते हैं और सृष्टि के अंत में महामृत्यु के समय सांप उसी में समा जाते, जिसने समा जाते हैं वो ही परमधाम है, जिसके लिए कहा तुम बच्चे परमधाम को कहां उतार लेंगे, है इस सृष्टि पर उतार, जिसके लिए मुरली में बोला है और बच्चे जो मुरली में बोला है अपने घर को याद करो परमनाम को, स्वर्ग को याद करो, शिव बाप को याद करो, शिव बाबा को अब एक को याद करें या तीन तीन को याद करें, एक को याद बोला तीन तीन को एक कैसे याद करो, क्योंकि शीतल में वो सुप्रीम झूल आता है वो ही हमारा स्वर्ग है, क्या वो मिल गया तो क्या थी पार ब्रह्म परमेश्वर थी, वो मिल गया तो और क्या चाहिए, इससे ऊंची प्राप्ति जीवन मुक्ति की और कोई वो नहीं। जिनको वो मिल जाता है उनको इसी जीवन में संगम युग में स्वर्ग से भी ऊंची प्राप्ति हो जाती। इसलिए बोला कि वो ऊंचे के ऊंचा अगला है जिसमें से सारी सृष्टि नंबर वन निकलते हैं और महामृत्यु के समय सभी उसी के अंदर समझ आता है। जो सत्य उसी वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है साक्षात्कार कौन है, चंद्र का संपन्न रूप नंद या विश्व चिंतन वाला है कौन सा रूप, विश्व चिंतन में झगड़े हुए हैं नहीं, मेरा कार्य ऊंचे से ऊंचा बाप है वो सबका प्रचलता है, सबको रखता है और वही सबको इनहेरिटेंस चलो क्या कि बाप कैसे बदला देगा, बाप एक होगा वो बच्चों को बदला देगा या सर्वव्यापी बच्चे बदला देगा, एक बाप है और कोई सुख जीवन की और शांति शांति का बदला देगा। Thank you.